हम इन दिनों में प्रेतो काम की पुस्तक में सीरीज में हैं और क्रम से हम चल रहे हैं। 19 अध्याय के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो शायद हम दो दो अध्यायों को लेके चलेंगे, क्योंकि तब कुछ स्थिति बदलेगी और तब उसके बाद। लेकिन अभी 19 अध्याय तक जब हम विचार करें तो हम देखें अलग अलग जगहों में न केवल सुसमाचार पहुँच रहा है लेकिन कलीसियाएं स्थापित हो रही हैं। हमने बीरिया की कलीसिया तक विचार किया था और हमने देखा था कि बीरिया की कलीसिया कितनी अच्छी कलीसिया है, जिसके बारे में परमेश्वर उनका वचन कहता है और वो तुलना करता है थिस्सलुनी की कलीसिया से। बीरिया की कलीसिया के लोग थिस्सलुनी की कलीसिया से अच्छे थे क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को ढूंढते थे रात दिन की, ऐसा है या नहीं है। सो ये हमने 17 अध्याय के 10 पद से लेकर के 15 पद तक बीरिया की कलीसिया पर देखा था और हमने इस बात पर ध्यान दिया था कि एक विश्वासी का जीवन, एक विश्वासी का सच्चा जीवन, अच्छा जीवन परमेश्वर के वचन के साथ जुड़कर रहने वाला जीवन है। एक विश्वासी अच्छा विश्वासी नहीं बन सकता यदि वो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ना ले, वो नहीं बन सकता। अगर वो कहता है कि मैं विश्वासी हूँ लेकिन वो वचन के साथ तो उसका जीवन नहीं है, वचन को स्थान नहीं देता, इतना व्यस्त है कि उसके जीवन में वचन की प्राथमिकता नहीं है और वचन को ना उसका सुनने का मन है, ना पढ़ने का मन है, ना अध्ययन करने का मन है, ना व्यक्तिगत डिवोशन है, ना पारिवारिक डिवोशन है, कुछ नहीं है, तो वो एक अच्छा विश्वासी नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा तो अच्छी बात है, बुरा लगे आप इसको सोचिए समझिए। एक वो व्यक्ति जो अपने आप को विश्वासी कहता है लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो अच्छा सही विश्वासी नहीं हो सकता, क्योंकि बिना वचन के हमारा जीवन चलाया नहीं जा सकता। वचन वो भोजन है जिसके द्वारा हमारा आत्मिक जीवन दृढ़ होता है। जैसे शारीरिक जीवन के लिए शारीरिक भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक भोजन की आवश्यकता होती है। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के लिए भूख और प्यास उत्पन्न हो सके। जितना अधिक इस विषय पर प्रचार किया जाए वो कम होगा और कभी उसका पूर्ति नहीं हो पाएगी, लेकिन समय समय पर हम बार बार स्मरण करते हैं इसको और ये अच्छा स्मरण करना। सो प्रश्न ये है, फिर से मैं दोहराऊंगा, क्या आपका जीवन परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा हुआ है? क्या आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान देते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं? क्या परमेश्वर के वचन से आप प्यार करते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं? क्या याद करते हैं, मनन करते हैं, मुखाग्र करते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को आप बच्चों को सिखाते हैं? आपके सामने प्रश्न है। सो प्रभु की सहायता से परमेश्वर ऐसा कर सके, तब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे। अब जब बीरिया में ये सब कुछ हुआ तो बीरिया में उनका को विरोध का सामना करना पड़ा, ये सब कुछ हुआ, तब वहाँ पर हम देखते हैं कि किस रीति से अब बीरिया से वो एथेन में जाते हैं। सो अब ये लोग एथेंस में पहुँचते हैं और एथेन में पहुँच करके, एथेन में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं। तो 16 पद से लेकर के 21 पद तक जब पौलुस एथेंस में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था तो नगर को मूर्तियों से भरा हुआ देखा और देखकर वो अपनी आत्मा में जल उठा। अतः प्रतिदिन आराधनालय में यहूदियों से तथा गैर यहूदी भक्तों से, वो बाजार में उनसे जो वहाँ मिलते थे वाद विवाद किया करता था। और कुछ इपिकुरी और स्तोईकी, ये दो नाम है, इसको मैं समझाऊंगा आज, इपिकुरी और स्तोईकी दार्शनिकों ने भी उससे तर्क वितर्क किया। कुछ कह रहे थे, ये बकवादी कहना क्या चाहता है? दूसरों ने कहा, ये तो विचित्र देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वो यीशु और पुनरुत्थान का प्रचार कर रहा था। वे उसे अपने साथ अरियोपगुस की सभा में ले गए और पूछने लगे, क्या हम जान सकते हैं कि ये नई शिक्षा जिसका तू प्रचार करता है क्या है? क्योंकि तू हमें कुछ अनोखी बातें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इन बातों का अर्थ क्या है, क्योंकि सब एथेनवासी और परदेशी जो वहाँ आया करते थे नई नई बातें कहने और सुनने के अतिरिक्त और किसी बात में अपना समय नहीं बिताते थे। अब ये एथेनवासी जो एथेन में उस जगह वहाँ पर जाते थे तो बहुत ही अधिक उनके अंदर जिज्ञासा होती थी। एथेन बहुत प्रसिद्ध नगर था, पिछली बार थोड़ा सा मैंने बताया था कि 490 में 490 में पर्शियन ने यूनान पर आक्रमण कर दिया। यूनान एथेन यूनान का मुख्य नगर था, कैपिटल था, जैसे उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है। सो यूनान पर आक्रमण कर दिया और ये बहुत भयंकर युद्ध था। पिछली बार भी थोड़ा सा मैंने बताया था, लेकिन आज और विस्तार से आपको बताना चाह रहा हूँ। युद्ध बहुत ही भयानक था और पर्शियन सेना धीरे धीरे पराजित हो रही थी, और ऐसा हुआ कि अंततः ये यूनान की सेना ने, ग्रीक बोलते हैं इनको, ये राज उस पर्शियन के आक्रमण से बच गया। पर्शियन का आक्रमण ये था, वो ये चाह रहे थे कि पूरी रीति यूनान को वो अपने हाथ में कर लें, यूनान को जीत लें, लेकिन उल्टा हुआ, यूनान जीत गया और पर्शियन हार गया। और जब ये यूनान जीत गया तो इस विजय के समाचार को सुनकर एक जवान इस विजय के संदेश को लेकर 38 किलोमीटर लगभग 22 मील यहाँ से बाराबंकी हमारे चर्च से थोड़ा सा आगे दौड़ता हुआ चला गया। और जब वो एथेंस पहुंचा तो उसने कहा, आनंद मनाओ कि यूनान ने विजय प्राप्त करी है, आनंद मनाओ कि यूनान ने विजय प्राप्त कर ली है, पर्शियन पराजित हो गया है, यूनान जीत गया है। ये संदेश पहुंचाने के पश्चात वो इतना जोश में था, इतनी दूर भागता भागता गया, इतने जोश में था कि वो चिल्ला रहा था कि यूनान जीत गया है, यूनान जीत गया है। और इस संदेश को पहुंचाने के पश्चात वो जवान उसी स्थान पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसने एक संदेश पहुंचा दिया, यूनान जीत गया है, ग्रीक जीत गया है एथेन। और इसी समय से एथेन से ये महारथन जो दौड़ आप देखते हैं 25 किलोमीटर, सो ये उसी समय से ये माराथन दौड़ आरंभ हुई। जब भी माराथन दौड़ आप याद करते हैं कहीं भी, आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ये एथेन कब से शुरू हुआ, 490 में ये युद्ध हुआ था, और उस समय से अभी नहीं, ओलंपिक बहुत पहले आरंभ हुए हैं। लेकिन जब और उन सारी बातों को देखते हैं तो वहां पर अब देखते हैं क्या था कि पौलुस वहां पर पहुंचता है, कुछ मूर्तियों को देखता है, मूर्तियों देखने के बाद उसके शब्द उसके अंदर लिखा हुआ है, उसके वचन में लिखा है, उसके अंदर एक जलन उत्पन्न हो गई। एथेन बहुत प्रसिद्ध धनी नगरी थी, बड़ी बड़ी वहां पर भवन थे, अच्छी अच्छी बिल्डिंग थी, और क्या नाम से ये एक धर्मनिरपेक्ष स्थान पाया था, धर्मनिरपेक्ष होकर हर एक अपने धर्म को मानने की बिल्कुल पूरी स्वतंत्रता थी। इसकी इमारतें बहुत सुंदर थी और इसमें खास तौर से इसमें जो कॉमर्स का सेंटर केंद्र है, एक बहुत बड़ा कॉमर्स का केंद्र, वाणिज्य केंद्र इस स्थान में पाया जाता था। ये जो नगर थे ये है कोरिंथ हैं, ये सारे नगर ऐसे थे जिसमें वाणिज्य या कॉमर्स का बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार और केंद्र पाया जाता था, और इसी कारण से इन स्थानों में लोगों पास धनी थे, पैसा था और अच्छा था, ये सारा था। सो यहाँ पर ये इस स्थिति को देखते हैं, और लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो दार्शनिक थे जिनका नाम लिया गया है इपिकुरी और स्तोकेनी, अभी हम इस दार्शनिकों के बारे में देखेंगे, जो बहुत अधिक फिलोसफर जिसको कहते हैं, फिलोसफर्स थे और वाद विवाद करते थे, ज्ञान रखते थे, सब कुछ रखते थे, ये इस रीति थे। लेकिन वहाँ पर क्या था, वहाँ पर उस नगर में मूर्तियाँ भी बहुत थीं, और मेरे प्रियो हम इस बात को जानते हैं कि आरंभ से निर्गमन की पुस्तक से ये आज्ञाओं में दूसरी आज्ञा है कि तू किसी की मूर्त या सूरत बना करके उसको दंडवत ना करना। निर्गमन उसका 20:4-5 पद, तू अपने लिए कोई भी मूर्ति ना बनाना और ना उसके उसको दंडवत करना, ना उसकी उपासना करना। क्यों? क्योंकि मूर्ति में जीवन नहीं है। और पौलुस इस बात को देख करके बहुत ही अधिक जल उठा, क्रोधित हो चुका। प्रश्न, आज एक विश्वासी के लिए कौन सी मूर्ति है, उसको इस बात को सोचना है, ठीक है, जिसकी वो उपासना कर रहा है, जिसकी वो पूजा कर रहा है। और आज सबसे बड़ी जो मूर्ति एक विश्वासी की जीवन में आती है वो धन की मूर्ति आती है, संपन्नता की मूर्ति आती है, सुख सुविधा की मूर्ति आती है और इस मूर्तियों में फंसता 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 चलाता है। इसीलिए पौलुस कहता है कुलूस उसके 3 और 5 में, 3 अध्याय उसके 5 में, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ काय का करता है मनुष्य, मनुष्य संपन्नता का, धन का, पद का, ये सारी चीज़ें, मान और सम्मान का, ये सारी चीज़ें। सो हमें अपने जीवन में से देखना है, हम कहते हैं कि ठीक है हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और हमने मूर्तियों को निकाल दिया, अब हम मूर्तियों को नहीं आगे सर झुकाते, मूर्तियों के आगे नहीं सर झुकाते। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे और आपको जानना है कि एक विश्वासियों के नाते कौन सी मूर्ति हैं जो आज किसी न किसी से हमारे पर प्रभुता कर रही हैं, हमें निरंतर कर रही हैं। हो सकता है मूर्ति हमारे स्वयं की विचारधाराएं, हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, हम अपने आप बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि किसी को कोई समझाने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ। कई तरह के जब लोगों से बात करते हैं तो लोगों के अंदर सुनने और सीखने की इच्छा बहुत कम पाई जाती है, सुनने और सीखने की इच्छा बहुत कम पाई जाती है। वो अपने ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं, वो किसी चीज़ को जानने की इच्छा नहीं प्रकट करते, लेकिन ऐसे बातचीत करते हैं कि जैसे वो सब कुछ जानते हैं, और इसीलिए में वो कहीं ना कहीं भंवर में फंस जाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये सच है, ज्ञान रखना अच्छी बात है, जानना अच्छी बात है और हम जानते भी, लेकिन फिर भी हमें हमेशा सीखने और सुनने के लिए तत्पर और तैयार रहना है। और अगर कोई सुनने और समझने के तैयार नहीं रहता तो ये उसके लिए पतन का कारण हो सकता है। कई बार अपने कार्य में, कई बार अपने व्यवसाय में, कई बार अपने परिवार में, कई बार कलीसिया में, कई बार व्यक्तिगत जीवन में, ये हम समस्या का अपने जीवन में सामना करते हैं। प्रभु मुझे और आप, मेरी और आपकी सहायता करें, मुझे और आपको नम करें। तो जब हम इन दो जनों के बारे में पाते हैं, ये कौन थे जो इपिकुरिया, ये थे, उनका ये मत था, उनका ये विश्वास था, उनकी वो, उनका ये ज्ञान था कि ईश्वर मनुष्य से इतना अधिक दूर है कि उन्हें मानव की कोई रुचि नहीं। वो कहता है, उनका ये मत है, उनका ये विचार है कि ईश्वर ठीक है, उसने एक दिन मनुष्य को बना दिया, अब वो इतना दूर हो गया है कि अब उसको मनुष्य की में कोई रुचि नहीं है, उनके विचार से अब उनको मनुष्य की कोई रुचि। दूसरा, मैं इपिकुरी के बारे में बता रहा हूँ, जो इपिकुरी ने का जो दार्शनिक लोग थे, इनके मत के अनुसार था। दूसरा उनका मत ये था, जो कुछ मनुष्य के जीवन में घटता है वो अचानक से या संयोग से घटित होता है। हम ये कहते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। वो कहते हैं संयोग से घट जाता है, संयोग था हो गया, होना था तो हो गया, नहीं होना था हो गया नहीं। अगर कुछ बीमारी आती है, कुछ दुर्घटना घटती है, कुछ हानि आती है, कुछ परिस्थिति ऐसी आती है, कुछ भी चीज़ आती है, हम उसके पीछे परमेश्वर की योजना को देखते हैं। लेकिन ये लोग संयोग से हो गया, क्योंकि ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर बहुत दूर है। जीवन का मुख्य उद्देश्य, तीसरा उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य भौतिक वादिता का भोग करना है। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भौतिक वादिता का भोग करना, ये इनका विचार था इपिकुरी का। 3 बातें बताई इपिकुरी के लिए, जो 18 पद में, प्रेरित काम 17 अध्याय के 18 पद में, और कुछ इपिकुरी और स्तोईकी। तो ये दार्शनिक है, तो 2 अलग अलग दार्शनिक है, इनको समझना है। एक दार्शनिक का विचारधारा, इपिकुरी का विचारधारा ये है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, अब उससे कोई मतलब नहीं है, ईश्वर मनुष्य से बहुत दूर है। दूसरा, जो कुछ मनुष्य में घटता है वो संयोग से घटता है, कोई भी परमेश्वर या ईश्वर उसको नियंत्रित नहीं कर रहा। तीसरा, अब चूंकि मनुष्य ऐसा है इसलिए मनुष्य का एक ही उद्देश्य है कि वो अपने जीवन में भौतिक वादिता को बढ़ाए, भोग करे, और यहाँ पर संसार में अपने पूरे से सुख विलासता में जीवन, भोगी भोगवादी बनकर जीवन व्यतीत करें। और ऐसे लोग हैं जो धन के पीछे मरे रहते हैं सुबह से शाम तक, उनको परमेश्वर के लिए समय नहीं रहता, उनको आराधना के लिए समय नहीं रहता, उनको वचन अध्ययन के लिए समय नहीं रहता, काम 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 काम, व्यवसाय व्यवसाय, नौकरी नौकरी। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैंने एचएल में काम किया और फैक्ट्री में काम करते हुए 9 साल में केवल मुश्किल से 2 घंटे मैंने ओवर टाइम किया, मुझे फैक्ट्री काटती थी। जैसे समय काम था, मैं हमेशा जल्द से जल्द चर्च पहुँचना चाहता था, मैं अपना समय परमेश्वर के कार्य के देना चाहता था, और मुझे उसमें संतुष्टि थी जो परमेश्वर मुझे दे रहा था, उसमें संतुष्टि थी। मेरे प्रियो, आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के समय नहीं निकालते, उनके घर में प्रार्थना सभा नहीं होती, घर में आराधना नहीं होती, पति पत्नी के साथ, वो अपने परिवार के साथ समय नहीं व्यतीत करते, अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं, रात में आते हैं सुबह जल्दी निकल जाते हैं, पता ही नहीं घर में क्या हो रहा है। ये अच्छा नहीं है, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। तो ये वो लोग हैं उस प्रकार के जो इपिकूरिय, हम सोचते हैं कि अब नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे उसी विचार में जीवन पर। दूसरा जो है वो है स्तोईकी, स्तोईकी। और हमें समझना अपने आप को, क्या हम इस पे तो नहीं है। अब इनका ये था, ईश्वर जो है सब में वास करता है, ईश्वर सब में वास करता है और यहां तक मनुष्य में भी, और हमसे अलग नहीं हो सकता। वो कहते हैं वो हमसे, इनका ये मत था कि ईश्वर हमसे कभी अलग नहीं हो सकता, कभी अलग नहीं हो सकता, उसे बनाया है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर को मनुष्य से पाप अलग करता है, पाप के कारण हम अलग थे, पाप के कारण अलग थे। वो कहता नहीं, अगर ईश्वर ने मनुष्य को बना दिया तो अब उसे वो कभी अलग नहीं हो सकता। तो बाइबल की विचारधारा और उनकी विचारधारा में बिल्कुल अलग है। फिर ये दूसरा कहता है, जो कुछ भी होता है वो उनके भाग्य में लिखा। ये भाग्य को ज्यादा मानते हैं, भाग्य को ज्यादा मानते हैं, है ना। बाइबल भाग्य के बारे में नहीं सिखाती, बाइबल भाग्य के बारे में। इसलिए अय्यूब की पुस्तक में कहीं लिखा हुआ है, चाहे दुर्भाग्य भी हो तभी तो कहेगा सौभाग्य है, है ना। और ये हम भाग्य को नहीं मानते। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। बाराबंकी में हम रह रहे थे, वहाँ पर एक दिन रात में हमारी बेटी है, हैप्पी बेटी छोटी थी बहुत, और हम लोग नए नए गए थे, कुछ ही समय होता और बगल में किचन था। सुबह सुबह उठे हम, देखा किचन में सारा सामान साफ हो गया, चोरी सब कुछ, एक एक दाल चावल साल सब चीज बर्तन सब कुछ पूरा चोर साफ करके चले। लेकिन हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर हमारे साथ था। रोज रात को मैं हॉकी लेके टहलता था और देखता था कोई कुछ नहीं, क्योंकि किचन अलग से ताला हम लगाते थे पड़ोस में। उस रात को मैं नहीं उठा, सोता रह गया, परमेश्वर जानता था। बाद में हमने इस बात पर विचार किया, हो सकता है अगर उस रात को मैं उठता और अगर चाहिए चोर रहते हो, कितने होते नहीं मालूम, तो अगर वो ऐसे होते हो सकता है मुझ पर आक्रमण कर सकते थे, उस कमरे में आपने मेरी वाइफ और बच्चे पर आक्रमण कर सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने वो वस्तु को जाने दिया जो फिर से आ सकती थी, लेकिन हमारे जीवन को बचाया। बहुत सारे अनुभव मेरे जीवन में हैं जिन पदों को मैं आपके सामने प्रमाणित कर सकता हूँ, और इन्हीं सारी चीज़ों ने परमेश्वर पर मुझे और निर्मल आसान का है। कई बार हम परेशान होते हैं, हताश होते हैं, संघर्ष होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फाइनली हम इस बात पे जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा संभालता है। तब तीसरा विचार इनका ये कि हमें तर्क के साथ जीना चाहिए, बिना तर्क किसी आने पर निर्भर रहे बिना हम नहीं जी सकते। हमें तर्क के साथ जीना है, बाइबल तर्क पर निर्भर नहीं है, बाइबल विश्वास पर, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के जीवन पर है। ये जितने फिलोसोफर तर्क पर निर्भर करते हैं, और इसीलिए जो बाइबल पर विश्वास नहीं करना चाहते वो बहुत अधिक तर्क करते हैं। ऐसे तो ऐसा आप उनके तर्क से कभी उनको संतुष्ट नहीं कर सकते। ऐसे लोग वो हैं जैसे वचन में लिखा है कि सूरों के आगे अपने मोती को मत डालो। हाँ, कभी कभी हमें तर्कों का लेकर के उनको समझाने का प्रयास करना है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि ज़्यादा वो तर्क में है और हमारी को सुनने का और उनको कुछ परिवर्तन नहीं, तो फिर हमें समझना है, पहचानना है, अपने समय को बर्बाद नहीं। सो ये है। तो ये आज भी इसी विश्वास की तरह के लोग रहते हैं, दोनों तरह के, तो मुझे और आपको देखना है। तो इस प्रकार के लोग थे जो आकर के पौलुस की सुनते थे और पौलुस से कहते। अब तब वो पौलुस को क्या नाम दे रहे हैं, पौलुस को क्या, पौलुस के लिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं पौलुस को ये बकवादी है। पहला नाम, ये जो तर्क वाले हैं या इस प्रकार के हैं, पौलुस को उनको पौलुस क्या दिखाई दे रहा है, बकवादी। सुषमाचार प्रचार करने वाले, सुषमाचार को बांटने वाले अक्सर लोग उनको बकवादी समझते हैं आज भी। तो आप उससे निराश ना होइए जब आप किसी को सुषमाचार बांटते हैं, चाहे कहीं पर काटते हैं, और लोग आपको बकवादी समझते हैं, आपको आपका तिरस्कार करते हैं, आप उससे निराश ना होइए। ये पौलुस के साथ हुआ, ना केवल बकवादी, लेकिन वो क्या आगे चल कर कहते हैं कि ये विचित्र देवता के प्रचारक है। वो कह रहा है बकवादी, दूसरों ने कहा ये तो विचित्र देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह देवताओं के समान एक देवता नहीं है, बहुत सारे देवताओं में एक और देवता जोड़ लीजिए, है ना। कई लोग अपने घरों में बहुत सारी मूर्ति रखते हैं, यीशु मसीह की मूर्ति रखते हैं, हम सबको मानते हैं, सब बराबर है, सब ठीक है, हम उसको मानते हैं उसको, नहीं नहीं सब नहीं, प्रभु यीशु मसीह अकेला, वचन प्रभु यीशु मसीह का मार्ग जीवन सत्य, मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उसने ये नहीं कहा मैं भी हूं, उसने कहा मैं ही हूं। और इसलिए हम औरों के साथ, उन 100 के साथ एक यीशु को जोड़ करके 101 नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, ये विचित्र देवता का प्रचारक है। अरे हमने तो बहुत सारी देवियों को लगाया हुआ है, लेकिन कौन सा देवता इसका प्रचार करे? नहीं मान। खैर पौलुस उसी बात को आगे चल के अपने सुसमाचार प्रचार के लिए उपयोग भी करता है। तब तीसरी बात वो क्या कह रहे हैं, ये नई शिक्षा, वो क्या कह रहे हैं, अरे ये नई शिक्षा, क्या हम जान सकते हैं ये नई शिक्षा जिसका तू प्रचार करता क्या है? ये नई शिक्षा है, हमने तो अभी तक नहीं सुना था, अभी तक तो हम व्यवस्था के बारे में सुन रहे थे, व्यवस्था ये करना ये करना ये करना ये करना ये करना। अब ये शिक्षा कहाँ आगे, यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह है। संसार में आज भी ये, अभी तक धर्म कर्म कर लो, पूजा पाठ कर लो, तीर्थ कर लो, दान दे लो, चर्च चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, यही सब सिखाया जाता है, यही सब नहीं नहीं। और मैं इसलिए कहता हूं कि बाइबल इसलिए फर्क है, प्रभु का वचन इसलिए फर्क है, प्रभु इसलिए कि सब जन ये कहते हैं जाओ जाओ ये करो जाओ ये करो जाओ ये करो जाओ ये करो। बाइबल क्या कहती है, प्रभु शमस का, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से बंधे हो मेरे पास आओ। पहले वो अपने पास बुलाता है, तब फिर हमें भेजता है, ये फर्क है। सब लोग कहते हैं जाओ 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 जाओ, बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह कहता है आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मेरे पर विश्वास करो। चौथी बात वो कहते हैं कि ये अनोखी बातें बताता, बिल्कुल अनोखी बातें, कहता 20 पद में क्योंकि तू हमें कुछ अनोखी बातें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इन बातों का अर्थ क्या है। हाँ ये अनोखी बातें हैं, सही में अनोखी बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह का संदेश अनोखा है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार अनोखा है, प्रभु यीशु मसीह संसार में महात्मा पापियों के लिए, हम सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहते हैं, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, सुंदर बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था, अपनी समानता में बनाया था, अपने साथ सहभागिता करने के लिए बनाया था, अपने साथ संगति करने के लिए बनाया था, शिष्य का आनंद उठाने के लिए बनाया था। लेकिन पाप के कारण क्या हो गया, पाप के कारण मनुष्य अलग हो गया, पाप के कारण मनुष्य अलग हो गया, और ना केवल मनुष्य के अंदर पाप आ गया लेकिन सृष्टि भी बिगड़ गई। अब वो भूमि ऊंट कटारे उगाने लगी, ऊंट कटारे उगाने लगी। ओ मेरे प्रियो, उसके बाद क्या हो गया? लेकिन फिर भी अनोखी शिक्षा यह है कि अब अनोखी शिक्षा यह कि परमेश्वर ने फिर भी मनुष्य से प्रेम किया है, मनुष्य से प्रेम किया है, और प्रेम करने के लिए अपने आप को इस संसार में मनुष्य बनाकर भेज दिया। यीशु आ गया, मेरे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जूठा। यह अनोखी शिक्षा है, जो भी प्राणी पाप करेगा मर जाएगा, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनोखी शिक्षा यह है, क्या मरने के बाद जीवन है? आजकल पेपर में उसमें कॉलम रोज आ रहा है मरने के बाद जीवन के लिए, मरने के बाद जीवन के लिए, और जो कुछ बातें सब बेकार की बातें। काश हम भी उसमें कुछ लिख सकते, कई दिन से विचार आ रहा है कुछ लिखने के लिए, लेकिन देख रहे हैं पर मनुष्य के सामने है, मनुष्य के सामने ये है। क्यों हम हर व्यक्ति के मरने के बाद स्वर्गी लगाते हैं? क्यों लगाते हैं स्वर्गी, क्यों नहीं नरक ले आते? इसलिए क्यों, क्योंकि कोई भी नरक में नहीं जाना चाहता। और इसलिए अनोखी बात यह है कि केवल वही स्वर्ग में जा सकता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। उसी के आगे स्वर्गीय शब्द लगाना सच्चा शब्द होगा, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ राज करेगा, अनंत जीवन जिसके पास रहेगा, वही ये अनोखी शिक्षा है। कह रही अनोखी बात है, और तब उसके बाद वो सभा में होकर उसने ये सारा विचार किया। सो एथेन में अब उसके बाद हम जब देखते हैं 22 पद से लेकर आगे तक, अब पौलुस किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को उनके सामने ला रहा है, परमेश्वर के संदेश को उनके सामने ला रहा है। 22 पद से लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, तब पौलुस इसके बीच में खड़े होकर, हे एथेन के लोगों, ऐसा लगता है कि तुम सब बातों में बड़े धार्मिक हो। ये सकारात्मक तरीका है परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करने का, पॉजिटिव वे टू प्रेजेंट द गॉस्पल। ये वो समझौता नहीं कर रहा है, वो समझौता नहीं कर रहा है, वो उसकी भावनाओं की कदर कर रहा है, वो उनकी अभिलाषाओं की, इनकी इच्छाओं की कदर कर रहा है। हाँ मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर अच्छी इच्छा है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर कुछ भावना है, तुम भूखे हो, तुम कुछ जाना चाहते हो, लेकिन तुम खोजते रहो लेकिन तुम्हें मिल नहीं रहा है। ये तुम्हारे अंदर चाहिए कि तुम जाना चाहते हो। वचन में लिखा है जो धार्मिक थे भूखे और प्यासे वे तृप्त किए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा। तो वो उनके उनके जीवन में सकारात्मक को देकर इस बात को रख रहा है कि एथेन के लोगों, क्योंकि जब मैं घूमते फिरते तुम्हारे पूजने की वस्तुओं का अवलोकन कर रहा था, तुम्हारे पूछने के वस्तुओं का अवलोकन कर रहा था, ध्यान से देख रहा था, तो मैंने एक वेदी पाई जिस पर यह लिखा था, अनजाने परमेश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम अनजाने के में पूछते हो उसी के संदेश को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अरे यह अनोखी शिक्षक क्या है, बहुत सारी मूर्तियां वहां पर, लेकिन एक मूर्ति के ऊपर कोई भी नाम नहीं, हर एक के ऊपर नाम लिखा, ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना, ये शनिचर है, सोमवार है, शुक्र है, जो कुछ भी है, सारे नाम लिखे हुए, लेकिन उसके ऊपर नाम नहीं। अरे अच्छा ठीक है ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो अनजाना परमेश्वर, कौन अनजाना परमेश्वर है? क्या तुम जानना चाहते हो अनजाना परमेश्वर कौन है? क्या जानना चाहते हो तुम अनजाना परमेश्वर? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अनजाना परमेश्वर। ये अनोखी शिक्षा है, ये अद्भुत बात है, और उस तक मैं तुम्हारे पास पहुँचाता हूँ। तब वो बहुत अद्भुत रीति से 24 पद से लेकर के 31 तक चार बातें परमेश्वर के बारे में बताता है, चार मुख्य बातें जो परमेश्वर के बारे में बताता है, और उनको इन परमेश्वर के चार गुणों को लेकर के वो परमेश्वर के संदेश देता है कि वो जान सके जो अनजाना परमेश्वर है वो कैसा परमेश्वर है। जिसको तुम अनजाना परमेश्वर देख रहे हो, जिसको तुम अनोखी शिक्षा समझ रहे हो, वो कौन है? तो चार वो मुख्य बातें जो 24 पद से लेकर के 31 पद तक बताना चाहता है। पहली बात 24 और 25 पद, वो सृष्टि करता है। पहली बात वो सृष्टि करता है, 24 और 25 पद, परमेश्वर जिसने जगत और उसमें की सब वस्तुओं को बनाया, वो इस स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता और ना ही मनुष्य के हाथों से उसकी सेवा टहल होती है, मानो कि उसे किसी बात की आवश्यकता हो, क्योंकि वो स्वयं सबको जीवन, श्वास और सब कुछ प्रदान करता है। वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो सृष्टि करता है, उसने संसार को बनाया है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। भैया तुमने उस परमेश्वर को नहीं जाना जिसने तुमको बनाया, मुझको बनाया। संसार आज क्या करा, इसी को रोमियो पॉलुस रोमियो में फिर समझाने का प्रयास करता है, क्रंथों में पहले दूसरे अध्याय में फिर समझाने का प्रयास करता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, लेकिन मनुष्य ने क्या करा, उस जिसको बनाया उसको भूल गया है, और उस बनाने वाले को ध्यान नहीं देता, लेकिन उसके सृष्टि को ध्यान देकर के उसके आगे सिर झुकाता है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए आपने घर में एक कारपेंटर को बुलाया, उस कारपेंटर को बुला करके उसने कहा भैया मेरे लिए आप एक स्टूल बना दीजिए या एक मेज और कुर्सी बना दीजिए, और उसने बहुत अच्छी आपको एक मेज कुर्सी बना दी, आपके लिए बना के दे दी। अब उसने मेज कुर्सी आपको बना के दे दी, आपने देखा मेज कुर्सी बहुत अच्छी है, और आप सुबह से शाम तक वो कारपेंटर खड़ा है, आप एक बार भी उसको नहीं कहते कि भैया कारपेंटर भाई साहब आपने मेज कुर्सी बहुत अच्छी बनाई, आप उसको एक बार भी नहीं कहते, लेकिन मेज कुर्सी के सामने कहते ओह मेज कुर्सी तू कितनी अच्छी है, मेज कुर्सी ये स्टूल कितना अच्छा है, कितना कंफर्टेबल है, कितना चमक रहा है, कितना अच्छा है, दिन भर उसका गुण गाते हैं, लेकिन जो बगल में कारपेंटर जिसने सुबह से शाम तक मेहनत करके बनाए उसको एक बार भी कहते हैं धन्यवाद भाई, थैंक यू भाई, आपने जो बनाया तो बहुत अच्छा है, तो क्या वो कारपेंटर क्या करेगा? कारपेंटर का दिन भर मैंने मेहनत करके बनाया, ये उसके आगे तो सर झुका रहा है, इसको तो पूछ रहा है, इसको तो सब कुछ कह रहा है, मेरे लिए एक शब्द धन्यवाद का नहीं कह रहा। और मनुष्य आज यही कर रहा है, आज मनुष्य ही कर रहा है, सृष्टिकर्ता को छोड़ करके वो सृष्टि के सामने से झुका रहा है, सृष्टिकर्ता का धन्यवाद नहीं कर रहा, सृष्टिकर्ता की उपासना नहीं कर रहा, सृष्टिकर्ता को नहीं पहचान रहा, लेकिन वो सृष्टि के आगे हर जगह पे देखता जा रहा है। और ये एक विडंबना है, इसी को जाना है। क्यों? क्योंकि वो कहते तो हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परंतु अपने उच्च कामों के द्वारा उसका इनकार करते हैं। वे कहते तो हैं, तीतुस 1:16 में है कि वे कहते तो हैं कि वे परमेश्वर को जानते हैं, परंतु वो अपने अच्छे कामों के द्वारा उसका इनकार करते हैं। हम कहते थे, बहुत लोग कहते हैं हम परमेश्वर जानते हैं, लेकिन उनके कार्य इस बात को नहीं दर्शाते। तो ये कह रहा है पहली बात कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। दूसरी बात 26 से लेकर 29 पद तक, उसने एक ही मनुष्य मूल से मनुष्य की प्रत्येक जाति को बनाया और संपूर्ण पृथ्वी पर बस गया जाए, और इसलिए उसने उनका एक निश्चय समय तथा उनके निवास की सीमाएं निर्धारित की कि परमेश्वर को ढूंढे और हो सकता है कि वो उसे टटोल कर पाए, यद्यपि वो हम में से किसी से दूर नहीं। हमने पहले देखा था कि एक विश्वास है, एक मत है जो कहते हैं कि परमेश्वर बना दिया, अब वो बहुत दूर हो गया, लेकिन पौलुस कहता है वो हमसे दूर नहीं, उनके उनके से अलग हट करके शिक्षा दे रहा है, उनके विपरीत शिक्षा दे रहा है, क्योंकि उसी में हम जीवित रहते हैं, चलते फिरते और अस्तित्व रखते हैं, जैसा कि तुम्हारे अपने कुछ कवियों ने भी कहा है, हम भी तो उसी की संतान हैं, हम उसमें जीवित रहते, चलते फिरते, अस्तित्व रखते, अर्थात वो परमेश्वर जो हमारा संचालन करता है। न केवल परमेश्वर ने सृष्टि की है, लेकिन वो आज भी हमें श्वास प्रदान कर रहा है, आज भी हम उसी में जीवित हैं, आज भी हमें उसी में चल फिर रहे हैं, जो हमारा दिन प्रतिदिन हमें जीवन, हमारे जीवन को संभालता है, हमें संचालित करता है, वो परमेश्वर। परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर संचालन करता है। 30 पद में इसीलिए अज्ञाता समय के अपेक्षा करके परमेश्वर अब हर जगह ये मनुष्य को ये आज्ञा देता है कि पश्चाताप करें, मनुष्य आज्ञा देता है कि पश्चाताप करें। तीसरी बात कि परमेश्वर को स्वीकार करना है, परमेश्वर को मान लेना है, अपने पापों से पश्चाताप करो, अर्थात तीसरी बात तो कह रहा वो उद्धार करता है, ना केवल सृष्टि करता है, ना केवल संचालन करता है, लेकिन वो उद्धार करता है, वो सेवियर है, और इसलिए उसके सामने तुम्हें अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है, मान लेना है। वो कह रहा है उपेक्षा करके परमेश्वर हर जगह अज्ञानता के समों की, तुम जो अज्ञानता में जीवन व्यतीत कर रहे हो उसकी उपेक्षा करके, उसको अलग हटा करके, वो क्या कहना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम उसके सामने पश्चाताप करो, ये उसकी आज्ञा है, क्योंकि वही एकमात्र उद्धार करता है। और चौथी और अंतिम बात इकतीस पद में कहता है, क्योंकि उसने एक दिन निश्चय किया है एक मनुष्य के द्वारा जिसको उसने नियुक्त किया है, वो धार्मिकता से संसार का न्याय करेगा, और उसने मृतकों में से उसे जिलाकर इस बात को मनुष्य पर प्रमाणित किया है। चौथी बात, वो न्याय करता है, 31 पद के अनुसार वो एक दिन न्याय करेगा, वो न्यायी परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो संचालन करने वाला परमेश्वर है, वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, मेरा और आपका न्याय करेगा। 31 पद में एक दिन उसे छाया है। अब वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि तुम जिन लोगों को विद्वान रहे हो, लेकिन मैं उस परमेश्वर के बारे में बताना चाह रहा हूँ, वो परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर कौन है। और तब उससे पहले उसने प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया है, बहुत स्पष्ट रूप से यीशु के बारे में प्रचार किया है, और तब वो कहता है कि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करो। अब 32 पद से लेकर के 34 पद तक इस संदेश की क्या प्रतिक्रिया हुई, तीन प्रतिक्रिया हुई। जब उन्होंने मृतकों के पुनरुत्थान की बात सुनी तो कुछ ठट्टा करने लगे, परंतु दूसरे ने कहा, हम इस विषय में तुझसे फिर कभी सुनेंगे। कुछ लोगों ने ठट्टा किया, कुछ लोगों ने टाल दिया। आज भी कुछ लोग ठट्टा करते हैं, कुछ लोग टाल देते हैं। जब सुसमाचार आप बांटते हैं तो लोग इस तरह से आपको रिस्पॉन्स करते हैं, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। कई बार अपने रिश्तेदारों के साथ बांटते हैं, कई बार अपने मित्रों के साथ बांटते हैं, कई बार मेहमानों साथ, या तो टाल देते हैं, अरे हाँ ठीक है बाद में सुन लेंगे, या टटक करते बाद में, अरे क्या बता रहे थे, क्या फालतू बातें करते, क्या बकवादी, जैसे पौलुस को कहा इस तरह के फालतू। तो उन्होंने ठट्टा किया, टाल दिया, लेकिन तीसरा कुछ रिस्पॉन्स था। परंतु कुछ लोग, 34 पद, परंतु कुछ लोग उसके साथ हो लिए और उन्होंने विश्वास किया। कुछ लोगों ने टाल दिया, कुछ लोगों ने ठट्टा किया, लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास किया। और इसलिए हम कहते हैं कई बार सुसमाचार का जब प्रचार होता है तीन रिएक्शन होते हैं, आज भी तीन रिएक्शन होते हैं। कई बार हम उन रिएक्शन को प्राप्त करते हैं जब लोग हमें रिस्पॉन्स करते हैं, यही तीन में से एक है, या तो वो ठट्टा करेंगे, या टाल देंगे, या वो विश्वास करेंगे। सो ध्यान देना, तो उसकी कोई परेशानी नहीं, आज भी वही मनुष्य का स्वभाव है, हौसले में देखना है, और मुझे और आपको देखना है, जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या हम वचन को सुनकर ठट्टा करते हैं, या टाल देते हैं, या गंभीरता से लेते हैं। और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि नहीं, तुम्हें पाप से मान लेना है, पश्चाताप करना है, उससे क्षमा मांगनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और तब उसके बाद आप थोड़े सोचते हैं, हाँ मुझे करना है, मैं जाऊंगा, ऐसा करूंगा, फलाने पास जाऊंगा, फलाने पास करूंगा, ये करूंगा, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद आप टाल देते हैं। लेकिन उन्होंने विश्वास किया, जिसे बाद में लिखा हुआ है, तब आगे लिखा हुआ है, जिनमें दुनियासी अरयुपगुस के सदस्य और दमिनसी, वहाँ पर मुख्य समितियाँ थीं जो कार्य को संभालते थे, उनका सबूत था, और उनकी जो महिलाएँ थीं वो बहुत समझदार थीं, प्रसिद्धि पढ़ी लिखी थी, सभ्य महिलाएं थी, लिखा है कि नाम की एक महिला, दमरिस नाम की एक महिला तथा उनके साथ अन्य और लोग भी थे जिन्होंने विश्वास किया। उन विश्वास करने में केवल अनपढ़ ज्ञानी नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखे थे, समझदार थे। अब मैं बार बार कहता हूँ, यूनान में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आकर के वो यहूदी भाषा को भी सीखा था और वो बहुत ज्ञानवान थे और इस रीति से उन्होंने परमेश्वर के वचन को सीखा। तो यहाँ पर वो पौलुस कहता है, सच्चा परमेश्वर कौन है? मेरे प्रियो, आज भी इस बात को जानिए, हमें मूर्तियों की आवश्यकता नहीं, मूर्तियों में जीवन नहीं है, हमें प्रभु की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। तो सुसमाचार को प्रचार करते हुए आप ना घबराएं, लेकिन सुसमाचार पर सच्चाई के साथ विश्वास करें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। और ये चीज़ हमारे जीवन में आए कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुने तो हम उसको टाल दें। संदेश एक ही है, व्यक्ति एक ही है, और व्यक्ति जो क्रूस पर मारा गया, जो लोगों को जीवन दे सकता है और जो लोगों को जीवन परिवर्तित कर सकता है, और उसका नाम यीशु। एक व्यक्ति, महान व्यक्ति, अद्भुत व्यक्ति, अतुल्य व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति, प्रभुता करने वाला व्यक्ति, और उस मनुष्य का नाम, उस व्यक्ति का नाम यीशु है। उस व्यक्ति का नाम यीशु है जो मेरे और आपके जीवन में न केवल उद्धार दे सकता है, लेकिन मेरे और आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। इसलिए मुझे और आपको नित्य यीशु की निकटता में रहना अनिवार्य है। मेरे प्रियो, यीशु एकमात्र नाम महान है जिसके जीवन में उद्धार है। मूर्ति में जीवन नहीं है, ना संतुष्टि है। आपका रिस्पॉन्स क्या है? आपका प्रत्युत्तर क्या है? एथेन में ये संदेश पहुंच गया, क्या आपके जीवन में संदेश पहुंचा है? हो सकता है जो आप वचन सुन रहे हो उनमें कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने आज तक यीशु मसीह को अपना जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता नहीं स्वीकारा हो। आपके लिए आज अवसर है, यीशु पर विश्वास करिए, यीशु को स्वीकार करिए। हो सकता है कि आपने यीशु को तो स्वीकार कर लिया, विश्वास करते हैं, लेकिन आप अभी भी तर्क में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तर्कों में खोए हुए हैं। सावधान रहें, कहीं तर्क आपको पीछे ना ले जाने, तर्क आपको पीछे ना जाने। आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, क्या आप उसके द्वारा आपका विश्वास उत्पन्न होता है, बढ़ता है? अब आगे चल के जल्दी से हम 18वें अध्याय में जाएंगे। जब 18वें अध्याय में, 2-3 मिनट लूंगा मैं, जब हमने इसको देखते हैं तो यहाँ पर अब उसके बाद वो कुरिन्थी में चले आते हैं, पहले पद से लेकर 4 पद तक। जब कुरिन्थी में जाते हैं तो मुख्य रीति से हम पौलुस को देखते हैं कि ना केवल कुरिन्थी में खुद गया है, लेकिन वहां पर उसको एक परिवार एक उसके संपर्क में आया। कुरिन्थी कलीसिया के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, ना केवल यहाँ, लेकिन 18 महीने वो कुरिन्थ में रहा है। और जब पहली कुरिन्थियों, दूसरी कुरिन्थियों की हम पत्री को पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कुरिन्थियों के लोगों की स्थिति क्या थी, क्या दशा थी। पर उसको समझ हम जब इसमें और अधिक विचार में जाएंगे या व्याख्या में जाएंगे, मैं कुछ बातों को आपके साथ बांटूंगा। लेकिन पहले पद से लेकर 11 पद तक पौलुस एवं साथियों के द्वारा कुरिन्थियों में सेवा है। दूसरा 12 पद से लेकर 17 पद तक पौलुस राजपाल के समक्ष है। तीसरा 18 पद से लेकर 22 पद तक मिशनरी यात्रा का समापन है, और उसके बाद वो वापस अंताकिया में वापस पहुंचता है। चौथा 18 अध्याय 23 पद से लेकर 28 पद तक प्रिस्किला, अकिला और अपुलुस हैं जो इफिसुस में, और उनकी बहुत बड़ी एक सेवा है जिसको समझना बहुत अधिक अनिवार्य होगा जब हम आगे देखेंगे। लेकिन संक्षिप में पहले 4 पद। इन बातों के पश्चात पौलुस एथेन छोड़कर कुरिन्थी चला गया और उसे अकिला नामक पुंतुस निवासी एक यहूदी मिला जो हाल ही में अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लोदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की राज आज्ञा दी। वो वहाँ उनके यहाँ गया, और इसलिए कि उसका भी व्यवसाय था कि वो उसके साथ रहा और वो काम करने लगा, क्योंकि व्यवसाय से वे तंबू बनाने वाले थे और पौलुस भी तंबू बनाने का व्यवसाय करता था। वो अपने आप तंबू बनाया करता था और उसे अपने जीविका संचालन किया करता था, और वो प्रत्येक सबके दिन आराधनालय में तर्क वितर्क करके यहूदी और यूनानी को समझाने का प्रयत्न करता था। तो पहले 4 पद तक हम खास बात को देखते हैं कि कुरिन्थ के बारे में कि किस प्रकार से, लेकिन कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में, कुरिन्थ के कलीसिया तो बाद में बनी, लेकिन कुरिन्थ नगरी के बारे में कुछ समझना बहुत जरूरी है। और जब इस कुरिन्थ की नगरी को आप समझेंगे तब आप कुरिन्थ में जो कुछ हो रहा है उसको समझेंगे, और जब पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया में जो पत्री लिख रहा है कुरिन्थ की कलीसिया को, उसको आप समझने पाएंगे। 4 मुख्य बातें पहली बात, जैसे मैंने बताया एथेंस जो था वो कॉमर्स का या वाणिज्य का एक बहुत ही फेमस नगर था और ठीक इसी तरह से क्रोथ में था, ठीक इसी तरह से था। अब यहाँ पर ये लोग समुद्र तट की छोर पर ही बसा हुआ था, जहाँ पर पूर्व से और पश्चिम से ये समुद्री जहाज आया जाया करते थे। ऐसा पोर्ट था जहाँ पर, जैसे अगर आप समझने के लिए मैं उदाहरण दूँ, जैसे सिंगापुर हो गया या दुबई हो गया, ये इस प्रकार के पोर्ट हैं कि जहाँ पर जहाज दूसरे दूसरे स्थान से आते हैं और वहाँ पर सामान उतारा जाता है और उतार करके, जैसे हमारे देश में कलकत्ता है, उतारे जाते हैं और फिर वहाँ से सामान दूसरी जगह में लोड होकर जाते हैं। एक जहाज से उतारा जाता है, दूसरे जहाज में चढ़ाया जाता है और फिर दूसरे देशों में या दूसरे नगरों में दूसरे स्थान में पहुँचाया जाता है। तो क्रंथ में भी ऐसी था और इसलिए इस काम के कारण वो लोग बहुत ही अधिक अच्छा पैसा कमाते थे और वो धन व्यवसाय के कारण ये क्रंथी कलीसिया के लोग, मतलब क्रंथी के नगर के लोग अच्छे धनी थे। नगर की बात करूँ, कलीसिया भी वहाँ पर स्थापना नहीं हुई है। यहाँ बहुत देश के लोग इस देश में बसते थे। रोमी राज में जब ये राजा शासक बना तो उसने क्या करा कि जितने यहूदी थे उनको निकाल जाने की आज्ञा दी और तब ये वहाँ से इटली, जो रोमी राज का मुख्य नगर है, कैपिटल है, वहाँ से लोग निकल गए और उसी में अकेला प्रिसिल्ला को भी निकलना पड़ा क्योंकि यहूदी पृष्ठभूमि से ये विश्वास में आए थे। कब आए थे, कैसे आए थे, इसका ज़्यादा वर्णन नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छे विश्वास थे। उनकी सेवाओं से आगे चल करके मालूम चलेगा, जिसको हम आगे देखते चले जाएंगे, जो पौलुस के साथ अंत तक सेवा में बने रहे। और एक ऐसा परिवार था जिसके द्वारा मैं और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक वो परिवार जो विश्वासी परिवार है, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित और सेवा पक है, उस वो कैसा परिवार है, आने वाले इतवार को हम उस पर और व्याख्या में जाएंगे। तीसरी बात, बहुत से लोग यहाँ पर ओलंपिक खेलों के लिए आया करते थे। एथेन में ओलंपिक शुरू हो गया था और ये यहाँ पर आकर रुकते थे और यहाँ से फिर वहाँ जाते थे, तो उसी रीति से व्यवसाय बढ़ता चला जाता था। रहते थे, रुकते थे, होटल थे, सब कुछ था। ये होटल आज नहीं, पहले से बहुत तरह तरह के बनाए जाते थे और लोग अपने पैसों को लाते थे, तो इस तरह से ही बढ़ता चला जाता। लेकिन एक खास बात यहाँ पर थी जिसको समझना है, वहाँ पर इन लोगों ने सुसमाचार पर विश्वास तो किया था, लेकिन यहाँ पर अधिकतर अनैतिकता का जीवन लोग व्यतीत करते थे। धन उनके पास था, संपन्नता उनके पास थी, व्यवसाय उनके पास था, इसलिए उस धन ने, संपन्नता ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया था और इसलिए वो मौज मस्ती का जीवन व्यतीत करते थे। और सबसे बढ़ करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर था, आर्फेद द्यातामिस नाम की देवी थी उसका मंदिर था। और ये मंदिर में खास तौर से वैश्याय आ करके पूरे पूरे दिन तक बालों को खोल करके नाचा करती थी। ये बहुत ही उस स्थान की होती और इसके कारण वहाँ पर बहुत ही अनैतिकता उत्पन्न हो रही थी। तो जब हम कुरुंथे में कलीसिया को देखते हैं, पौलुस को पत्र लिखते हुए देखते हैं, तो इसी लोग कलीसिया को संदेश देता है और बहनों को आदेश देता है कि अपने सर को ढकें, क्योंकि वहाँ प्रचलन उस समय सर ढकने का नहीं था। इसका कारण यही था, इसके पीछे की बैकग्राउंड यही था। और इसीलिए वो कुरुंथी कलीसिया में जब वो निर्देश देता है तो उन सारी बातों को ध्यान में रख देता है जो उस समय से उनके स्थान से चली आ रही थी, जो मंदिर को के साथ जुड़ी हुई थी। और इसलिए वो मूर्ति थी और वो प्रेम की देवी कहलाती थी, बहुत ही प्रसिद्ध देवी थी। लोग उसके लिए उपासना करते थे, बहुत चढ़ाते थे और उसके द्वारा भी बहुत सारा व्यापार किया था। उसके बारे में मुझे ज़्यादा बोलना नहीं, आप जानते हैं। तो जो बातें आज हम संसार में देख रहे हैं या अपने भारत देश में देख रहे हैं, वो नई बातें नहीं हैं, वो बहुत पुरानी हैं। बड़े बड़े मंदिर को होना, देवी देवताओं को होना, वो हम अब्राहम के समय से हम देखते चले आ रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ से सारी चीज़ें शुरू हो गई थी और परमेश्वर ने बार बार उनके साथ व्यवहार किया था। पुराने नियम में इस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसीलिए नगरों को नष्ट किया, इसीलिए स्थानों को नष्ट किया, इसीलिए राजाओं को प्रश्न किया कि वो सीख जाए। तो ये स्थिति थी। तो क्रंथे की बैकग्राउंड है, चार बातें बनी थी। अब जब हम इसको समझेंगे तो हम देखेंगे कैसे सुसमाचार का इसके जीवन में कार्य हुआ। जब पहले चार पद तक अकेला और पौलुस का मिलना है, 5 से 8 पद तक यहूदी किस प्रकार से तिरस्कार करते हैं, लेकिन 9 से 11 पद में परमेश्वर किस प्रकार से दर्शन देता है। जल्दी से, अकेला और प्रिस्किला व्यवसाय करते थे तंबू बनाने का। पौलुस भी तंबू बनाता था और तंबू बना करके अपने खर्चे को, अपने जीविका के खर्च को उत्पन्न किया था। यद्यपि दूसरी कलीसिया ने उसको समय पर समय मदद करी थी, सहायता की थी। उस समय था कि जो सुसमाचार के प्रचारक जाते वो जब दूसरे घरों में या दूसरे नगरों में जाते थे तो लोग धन इकट्ठा करके उनकी देखभाल क्या करते थे, उनकी सेवा करते थे। बाद में सिस्टम थोड़ा थोड़ा बदल, आज भी कई सारे सेवक इसी तरह सेवा करते हैं। दूसरी बात, पौलुस सेवा के द्वारा, इस काम के द्वारा न केवल अपनी सहायता करता था लेकिन दूसरों की सहायता करता था, दूसरों की सहायता करता था। अब उसके साथ ये भी मिल गए, तंबू बनाने के काम में शामिल हो गए और साथ मिलकर कार्य करने लगे। लेकिन सबसे बड़ के बात ये थी, चार पद में, और वो प्रत्येक शब्द के दिन आराधनालय में तर्क वितर्क करके यहूदी और यानियों को समझाने का प्रयत्न करता था। व्यवसाय कर रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन सबत के दिन वो जानबूझ के जाता है और सुसमाचार को बांटता है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा परिवार जो सुसमाचार का प्रचार अपने परिश्रम के द्वारा कर रहा है। आज पास्टर की सेवा बहुत जरूरी है, पासवान की फुल टाइम मिनिस्ट्री बहुत जरूरी है, मैं उसके विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ, प्रभु ने मुझे बुलाया। लेकिन केवल जीविका चलाने के लिए या कुछ नहीं कर पा रहे इसलिए उसको करना गलत है, या कुछ बड़प्पन प्राप्त करना गलत है। और कई बार आज इसी प्रकार से लोग जीवन में बड़प्पन पाने की जगह घटते चले जाते हैं और बाद में अलग हो जाते हैं। साधारण है, परमेश्वर के वचन के सिद्धांत हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों का, प्रभु के उन लोगों का, जो आज कैसे ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे पदों पे हैं, जो हमारे हमारे चेयरमैन बने हैं, जो बोर्ड के चेयरमैन, वो दिल्ली एयरपोर्ट के वाइस चेयरमैन है, प्रभु ने उनको अच्छा पद दिया है, जवान है। और वो उनकी साक्षी मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि अगर आप उनके ऑफिस में चले जाएं, कांच का ऑफिस बना हुआ है, पहले वो अंदर जाएंगे, अपने ऑफिस में घुटने टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे और तब अपने कार्य को शुरू करेंगे। उनके ऑफिस में, जो उनका ऑफिस है, वहाँ पर पूरे बाइबल के पद, बाइबल के वर्सेस, कैलेंडर सब कुछ लगा है। लोग दूर से देख सकते हैं कि एक मसीह जन है और वो कभी समझौता नहीं करते, अपनी साक्षी उन्होंने आज भी बना रखी है, आज बना रखी है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। इसी तरह के लोगों को आज कलीसिया है और वो बहुत सारी सेवाओं में अपना समय, अपना धन देने के लिए तैयार रहते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं ऐसे लोगों के लिए। मेरे प्रियो, यदि प्रभु ने आपको इस तरह का जीवन दिया है तो कलीसिया को, आप कलीसिया के साथ खड़ा होना आपके लिए घमंड की बात। लेकिन अगर आप किसी न किसी रीत से कलीसिया से पीछे हटते हैं, अपने हाथ को रोकते हैं, कुछ और करते हैं, तो उसका मतलब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे। आज ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सच मुझे अकेला प्रस्कर के समान है, और भी हम उसके बारे में बाद में देखेंगे। मेरे प्रियो, सच में आज की परिस्थिति में मुझे और आपको ये वचन प्रोत्साहन प्रदान करता है। आपकी परिस्थिति में ये वचन मेरे और आपके लिए सदा के लिए एक आगे बढ़ाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें और होने दें कि परमेश्वर का वचन फैलता चला जाए। अगले संडे मैं थोड़ा सा फिर और पीछे जाकर के शुरू करूँगा, लेकिन अच्छा है जो कुछ हमने विचार किया है। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करें। परमेश्वर कुरिन्थियों में कलीसिया को स्थापित कर रहा है, अपने दास को नहीं छोड़ रहा, पौलुस को नहीं छोड़ रहा, पौलुस को उसने थामा हुआ है, अपने सेवकों को वो नहीं छोड़ता, वो उसको थामे रहता है, जो सच्चाई के साथ उस पर बने रहते हैं। हाँ, स्वार्थ, झूठ, छल, धोखा, जलन, द्वेष, ईर्ष्या, पक्षपात, स्वार्थीपन, अगर ये है तो परमेश्वर अपने हाथों को रोक लेगा। परमेश्वर पौलुस के जीवन को जानता था, वो उसकी निर्बलताओं को भी जानता था, लेकिन उसके जीवन को भी जानता था। प्रभु पौलुस, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन की निर्बलताओं को भी जानता है, पर जीवन को भी जानता है। प्रभु मेरे आपके साथ करें कि हम ना डरें, वो हमारे साथ है और सुसमाचार का कार्य बढ़ता चला जाए। आइए हम प्रार्थना करें।